हम आपके हक का ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
समय नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड सब 6:53 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। ब्यूटीफुल गॉर्जियस 30 डिग्रीज टेम्परेचर ट्यूसडे का दिन, जून की 18 तारीख भाई। और कोई यहां पर हमारे जो ऑफिस में बैठे हुए लोग वो करेक्ट भी नहीं कर रहे, वो कहने दो जनवरी नहीं है साहब, उन लोगों के लिए होगी जनवरी, मेरे और आपके लिए जो है जून की 18 तारीख है। और अब ये चले गए हम आपको न्यूज की जाने। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा। मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा इज अ डिवीजन ऑफ मुस्लिम वेलफेयर सेंटर इन टोरंटो। ईद आई और ईद चली गई, मगर ईद जो है ईद उल अजहा 3 दिन मनाते हैं, क्योंकि 3 दिन हम इसकी कुर्बानी करते हैं। अगर आपने भी जानवर कुर्बान किया है और उसका तीसरा हिस्सा जो है आप देना चाहें तो मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को दे सकते हैं। वहां पर साल के 12 महीने ये नीडी लोगों की मदद करते हैं। तो मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा का नाम याद रखें आप, mwcanada.org पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। mwcanada.org पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। डॉक्टर फयाज कुरैशी साहब फैमिली डेंटिस्ट्री, ओरल सर्जरी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, सेडेशन डेंटिस्ट्री, नो इंश्योरेंस, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब का कहना है स्पीक योर ओन लैंग्वेज। जी साहब, दो लोकेशन मिसागा में, एक स्कारब्रो के इलाके में, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे यहां पर। कोई भी दांतों का प्रॉब्लम हो आपके आपके घर वालों का, डॉक्टर फयाज कुरैशी 9052325678 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे जो है साहब, ओपन माइक कैफे आपको मिलेगा 1310 डंडा स्ट्रीट यूनिट नंबर 3 इन मिसिसागा। 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे में पाकिस्तान के लजीज खाने हो तो पहुंच जाइए। और कल जनाब इकबाल साहब भी वहां तशरीफ ला रहे हैं, अगर उनके साथ बैठ के आपने डिनर करना हो तो कल उनसे पहले से फोन करके अपनी जगह बुक करा लें। 416-526-6800 ओपन माइक कैफे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैनेडियन सब्जी फार्म की बात करना चलूं, ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, इसके साथ साथ रात की रानी हो, जैस्मिन हो, तुलसी हो एंड बहुत सारे फूल पत्ते यहां मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स भी हैं, जैसे फलियां हो, भिंडी हो, चिलीज हो, टोमेटोज हो, एग प्लांट हो, सब इन तमाम के आप पौधे भी ले सकते हैं यहां से। और अगर फ्रूट के दरख्त चाहिए हो आपको तो वो भी आपको अच्छे तरोताजा बड़े हेल्थी आपको मिलेंगे यहां पर। आपने जाना है एयरपोर्ट रोड पे, 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन में, 9058409000 इनका फोन नंबर है। कैलेडन सब्जी फार्म। चलिए साहब, हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। मेरी मुलाकात फिर होगी आपसे फिर कभी इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। अब मेरा ख्याल ऋषान और आमिर आएंगे, वो आके अपने क्रिकेट दिखाएंगे, सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। या और अच्छा, खबरें सुननी है आपने? ओ छोड़ो, परे यार खबरें सुन के की करोगे, ये तो खबरें लेके आती हैं सारी, वो कौन सी वाली, धमाके वाली, दिल वैसे दहक जाता है। शाजिया मलिक जी, जेवनी की बात कर रहा हूं मैं। मुस्कुराती बैठी है सामने, मेरी बारी आने दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, जितना आपने मेरे खिलाफ बातें करनी थी आप कर लें। वो देखे उधर वो चीता भगा रहे हैं आमिर, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं चीता हूँ, इसलिए कि मेरी कल की भी प्रिडिक्शन ठीक आई है। सारे बड़ा कह रहे थे नहीं अफगानिस्तान बड़ी अच्छी टीम है और ये है और वो है, मैंने कहा था कि जी नहीं जो है ये जीतेगा।
जो लोग हमारा टीवी देख रहे हैं ना इस वक्त, वो देख सकते हैं ये कि जो इन्होंने कपड़े पहने
हाल उतार के चीते की मैंने पहनी हुई
है। और वो चीता जो है, दूसरा चीता रो रहा है, चीता जो है वो आ गया है अपने खाल लेने के लिए इनके पास। तो देखे वेल डन।
तो ये जनाब हमने जो चीता गिरी फिर से कल दिखाई है ना माजिद भाई, कल से फिर से मैंने कहा वेस्ट इंडीज जीतेगा, तो मेरी प्रिडिक्शन कल भी ठीक आई। और जितनी देर आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे आपके सारे फ्रूट्स मैंने खा लिए हैं।
मैं देख रहा था, इसलिए बोल रहा था मैं।
हाँ जी हाँ जी, जितना और बोलो, मैंने कहा और लंबा इनको करने दो ताकि पूरा डब्बा खत्म हो जाए, लेकिन फिर आपने कहा ओहो नहीं डब्बे में से थोड़ा सा मुझे भी चाहिए, तो आपने बंद कर दी बीच में से मेरी जो वो तरीफें आप कर रहे थे ना।
हाँ जी हाँ जी,
उसका मैंने फायदा उठा के आपके सारे फ्रूट्स खा लिए। भूखे बैठे रहना आप।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं हम तो आपकी तरीफें करते रहते हैं।
हाँ तो भूखे बैठे रहना फिर आप।
ठीक है,
बोरी आपको जलानी पड़ी, $20,000 आपको जो है वो लूज करने पड़े आपको और आपके चेले को, हैं जी। और जो है आगे भी जो मेरी इंशाल्लाह प्रिडिक्शंस होंगी वो ठीक होंगी। फिर आप मुझे कहते हैं जब तुम मजार खोलो तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए, कैसे हिस्सा देंगे जब आप मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो
देख ले आप।
हाँ कोई मेरे साथ बना के रखो मैंने जल्दी ये बेकार काम छोड़ देना है और मैंने मजार खोलना है। सोच लें पैसे बाहर कलेक्ट करने के लिए मैं किसको रखूंगी, आपको और आमिर को। तो आप मेरे साथ, मैं इसीलिए कह रही हूँ तालुकात अच्छे रखो माइंड।
और शाम को सिर्फ ₹50 की आपको मिलेगी बाकी सारे
लिफाफे आपकी जेब में तो ये है जी चक्कर। घर मजदूरी आप बड़े अच्छे लग रहे हो बाल छाल कटा के, शुक्र है अल्लाह का, वरना पहले तो आप बिल्कुल, मैं आपको कहने वाली थी मजदूरी अब संन्यास ले लो जाके जंगलों में जा बैठो
आप लोग सारे मेरे बालों से
जलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर पे जिस वक्त आप अपने बालों को यूं और यूं करते हैं ना,
यूं करता हूं
तो कुछ लोग यहाँ पे जो जिनके सर पे कुछ भी नहीं है ना, खेती खाली है, वो बड़ा जेलस होते हैं आपसे। तो मैं तो खैर नहीं होती लेकिन दूसरे लोग कुछ होते हैं।
आप भी सोचते होंगे कि काश मेरे भी ऐसे बाल होते।
हाँ हाँ बिल्कुल, लहलहाती ठीक है जी। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑफ मिसेस सागा। तो ये डेंटिस्ट्री जो है ये इसमें बहुत सारे आपको जाहिर है कि आंखों का इलाज तो नहीं मिलेगा, डेंटिस्ट जो है तो आपको जो है दांतों के सारे आपके काम ठीक करेगा। कहते हैं जी ये ब्रेसेस लगाएंगे, कॉस्मेटिक और इम्प्लांट जो डेंटिस्ट्री है आपकी उसकी सर्विसेज आपको ऑफर करती है। ये हैं डॉक्टर नाजिया रहमान और शी इज लोकेटेड एट 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट E104 इसमें ब्रैम्पटन में। तो अगर आपको उनसे कुछ सुविधाएं चाहिए दांतों के सिलसिले में, यानी दांतों में कोई कीड़ा वीड़ा पड़ गया है, कुछ हो गया है, दर्द है या पीले दांत हैं, तो प्लीज आप डॉक्टर नाजिया रहमान को फोन करें एट 9058721100। एंड पायल ज्वेलर्स, इनका इफ्तिताह कबीरा जो है वो हो चुका है और इफ्तिताह कबीरा के अंदर इन्होंने जो है उसके बाद बहुत जबरदस्त ज्वेलरी मंगवाई है वहां से, दुबई से और सिंगापुर से, और इंडिया पाकिस्तान के तो इनके पास हैं ही। दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन, और आप इनको कॉल भी कर सकते हैं ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इनका नंबर है 9057907879। एंड ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, फैसल चटा से आपको फोन करें। इनके दो बड़े ही जबरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में। मिसेस सागा का जो रेस्टोरेंट है वो है लोकेटेड एट 4141 डिक्सी रोड मिसेस सागा, 9052323663 का नंबर है। ओकविल जो है वो लोकेटेड एट 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, और नंबर है 9052262294। ठीक है जी, तो ये हैं कहानियां हमारे इनकी जो इस स्पॉन्सर हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, आपको हमने बताया था कि हमारे जंती टूडो साहब जो है ना, जंती टूडो साहब ऐसे काम कर लेते हैं कि फिर लोग हैरान हो जाते हैं। ये गेम थे आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड के अंदर ये जो चल रही थी यूक्रेन स्मिट, इन बर्जन स्टॉक के अंदर वहां पे ये जो चल रहा था पीस के लिए जो बातें हो रही थी यूक्रेन और रशिया की वॉर में, वहां पे जी ट्रूडो साहब ने बड़ा नारा लगाया, सलावा यूक्रेनी, इतना ऊंचा इन्होंने नारा लगाया कि जो स्विस प्रेसिडेंट थे जो थी वायला एमहर्ड, उन्होंने मुड़ के देखा और इवन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की थे वो भी इनको मुड़ के देखने लगे। मायन व्हाट इज दिस, यू आर व्हाट, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये आप कैसे ये स्ट्रीट बॉयज वाली आप बात कर रहे हो, है जी। बरल जी बड़ा इसमें रिएक्शन लोगों का है, सारे वहां पे जितने भी लोग थे वो मुड़ मुड़ के ट्रूडो साहब को देख रहे थे। ट्रूडो साहब को लग रहा था शायद कि मैं अब इतना शायद हैंडसम नहीं रहा हूं, लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, तो इन्होंने जी ये वो मोमेंट वहां पे क्रिएट किया। यहां पे अलबत्ता जी 90 कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो आए हुए थे, इंक्लूडिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों, और इसके ऊपर जो है रशिया को नहीं बुलाया गया था और उसके ऊपर रशिया ने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया। दिमित्री मेडवेडेव जो हैं रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी कि नो पार्टिसिपेंट्स इन पीस फोरम नोज व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट आर दे देयर फॉर और व्हाट दे वर टॉकिंग, उनको कुछ यानी कि क्लू नहीं था कि वो किस लिए जमा हुए हुए थे और वो क्या बात कर रहे थे। इसके अलावा चाइना जो था उसने भी अटेंड नहीं किया था और ब्राजील जो था वो सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर इसको अटेंड कर रहा था पीस समिट को। इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जो हैं उन्होंने ये जो फाइनल कम्युनिकी आई थी इसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए थे। ये समिट जो थी वो दो दिन तक चलती रही थी और उसमें इन तमाम लीडर्स ने बातचीत की थी कि रशिया और यूक्रेन की ये जो वॉर है इसको कैसे रोका जाए। बड़ा जल्दी याद आ गया नानू है कि वॉर नू रोक लिया जाए। अच्छा जनाब, जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने एक बड़ा वाइड रेंजिंग इंटरव्यू दिया है पावर एंड पॉलिटिक्स को और इसके होस्ट जो हैं डेविड कॉकरेन उनको, और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, खासतौर पर जो फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर थी इसके ऊपर वो कर रहे थे। और डेविड ने इनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी कि हर किसी कनेडियन को अलार्म होना चाहिए, जैसे कि जगमीत सिंह ने कहा था कि मैं बड़ा अलार्म हूं, तो ट्रूडो साहब ने कहा कि सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स नहीं, हर किसी का कंसर्न होना चाहिए फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो आ रही है अलेजली फॉरेन गवर्नमेंट्स की तरफ से और ये बड़ा कंसर्निंग है। फिर उसने पूछा कि आपके रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ कैसे हैं और ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो आपने जो लगाया है या कि आपकी फ्यूचर लीडरशिप जो है लिबरल्स के लिए उसकी क्या, तो उसका एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि ये नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस NSICOP की जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी जो है अलार्मिंग है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम हर चीज को पब्लिक नहीं कर सकते, हमको एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि हमने कौन सी चीज पब्लिक के सामने लेकर आनी है और कौन सी नहीं लानी है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो कि ये अंदर की हमें खबरें देते हैं, तो उन तमाम कैनेडियंस जो हैं उनको सेफ गार्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा जी कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मेरी मुलाकात इनसे हुई है जब से कि ये एलिगेशन इन्होंने लगाए थे हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के सिलसिले में कि जी उसमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये जो भी G7 की मीटिंग थी उसका वो हवाला दे रहे थे कि वहां पे मेरी उनके साथ मीटिंग थी, हम बहुत सारी चीजों के अंदर अलाइंड हैं क्योंकि हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं और हम चाहते हैं हम अपनी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, अब जबकि इलेक्शंस हो गए हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है फिर से एक दूसरे के साथ एंगेज करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रपोज्ड हम कैपिटल गेन्स टैक्स है इसको उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा जी कि हमारा इंटेंशन है कि एक फेयर जनरेशन जो है वो हम क्रिएट करें और बहुत सारे यंगर जो कैनेडियंस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू अफोर्ड अ हाउस, तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो अमीर लोग हैं सारा पैसा उनके पास चला जाता है और इनके पास जो है कुछ भी नहीं आता, तो इसीलिए हमने ये रखा है कि अमीर लोगों को टैक्स करेंगे ताकि दूसरों को इसका फायदा आ सके। फिर जब इनसे पूछा गया कि जी कंजर्वेटिव पार्टी कॉन्स्टेंटली 20 पॉइंट्स की लीड पे है आपके साथ, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो ट्रूडो साहब ने कहा कि इस वक्त कैनेडियंस डिसीजन मेकिंग के मूड में नहीं है या मोड में नहीं है, और वो इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सब चीजें जो हैं ये वक्त आने पे पता चलेंगी। और टोरंटो सेंट पॉल्स की राइडिंग जो है उसमें कहा गया कि जब डेविड कॉकरे ने कहा कि ये तो आपके लिए बड़ी मस्ट विन राइडिंग है, तो उसने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी इलेक्टोरल कंटेस्ट जो होता है वो मस्ट विन होता है. तो नॉट ओनली दिस बट एनी अदर राइडिंग ऑल्सो इज मस्ट इन फॉर मस्ट विन फॉर अस एंड फॉर अदर्स एज वेल. तो बड़ा ही वाइड रेंजिंग ये इंटरव्यू था और भी बहुत सारी इसमें बातें की. आप ये देख सकते हैं जाके ये जो इनका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये इंटरव्यू डेविड कॉकरन का जी पावर एंड पॉलिटिक्स वो आप देख सकते हैं. इसके अलावा आज कनाडा ने जी सैंक्शंस लगाए हैं 13 मोर रशियन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर, जिसमें कि रशिया के इंटेलिजेंस सर्विस के लोग, पुलिस फोर्सेस, करेक्शनल जो सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, फॉर पॉइजनिंग, जेलिंग एंड डेथ ऑफ अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवल्नी. इसका जो जिक्र है उन्होंने उस वक्त कनाडा ने किया है जबकि जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलनी जोली और टूडो साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं. नेवल्नी की जो विडो है यूलिया नेवल्निया की, इसके अंदर ओटावा के अंदर जो मेलनी जोली जो है उन्होंने यूलिया के साथ बात करते हुए कहा कि कनाडा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता है क्रेमलिन को इनकी डेथ के लिए. इनकी डेथ हुई थी फरवरी 16 को रशिया के पीनल कॉलोनी के अंदर जहां पे ये सर्व कर रहे थे 19 ईयर्स सेंटेंस. तो उन्होंने कहा जी कि इसको खामोश करने की कोशिश की जा रही थी और इससे पहले भी सैंक्शंस लगाए थे कनाडा ने 6 रशियंस के ऊपर 2 वीक्स आफ्टर नेवल्नीज डेथ. जॉली ने कहा जी कि हमें पता है कि कौन कौन इसकी डेथ के अंदर इन्वॉल्व है और इससे पहले भी इसको एक जो नर्व एजेंट दिया गया था पॉइजन करने के लिए ताकि इसकी डेथ हो जाती 2020, लेकिन ये जर्मनी गए और वहां पे बचाए गए. इनकी जो अरेस्ट थी वो भी इलीगल थी जिसमें कि इनको फिर जिस वक्त ये आए थे ऑन रिटर्न इन 2021 तो अरेस्ट किया था वो भी इलीगल थी और बहुत ही ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है रशिया ने दिखाई है. रशिया ने इन तमाम चीजों के अंदर अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया. उन्होंने कहा जी हमें इसके डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है. लेकिन जो ट्रूडो साहब थे जिस वक्त इसकी डेथ हुई थी नेवल्नी की तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि पुतिन जो है इसने इसलिए इसको एग्जीक्यूट किया है क्योंकि पुतिन वीक है और वो क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं सुन सकता है. मतलब ये जड़े ने ना साढ़े अपने इतने वेस्ट के भाईजान ये समझते हैं कि जो सिस्टम असी चला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे जो है यानी माई वे और द हाई वे, बस मेरी बात अगर आपने मेरे साथ है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है, आप सादिक और अमीन हैं. लेकिन अगर आपने मेरे खिलाफ कोई बात की है तो आप ना सादिक और अमीन हैं, आप खराब हैं. व्हाट इज दिस माजिद भाई, देखो जरा. अच्छा जी, ओके. अच्छा जी, एक नई स्टडी आई है और इसके मुताबिक जो ऑन्टेरियो का कोरोनर्स ऑफिस है उसने इंडिकेट किया है कि जो ओपीओइड रिलेटेड डेथ्स हैं इन शेल्टर्स वो ट्रिपल हो गई थी पेंडेमिक के बीच में कंपेयर टू फ्यू इयर्स प्रायर टू दैट, यानी प्रायर टू पेंडेमिक. ये जो स्टडी है ये की है रिसर्चर्स फ्रॉम ऑन्टेरियो ड्रग पॉलिसी रिसर्च नेटवर्क एट ट्रोनो सेंट माइकल्स हॉस्पिटल और उन्होंने एंड पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो. उन्होंने कहा जी कि 210 एक्सीडेंटल ओपीओइड डेथ सेंटर्स में हुई है बिटवीन जनवरी 2018 टू मई 2022. 48 डेथ्स जो थी वो पेंडेमिक से पहले हुई थी इन मिड मार्च 2020 और 162 जो है पेंडेमिक के बाद हुई थी. इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ज्यादातर डेथ्स जो है इलिसिट ड्रग सप्लाई की वजह से है जिसमें कि बेंजोडाइजा पाइन्स है और फेंटेनॉल है और दूसरी जो है जैसे कि मेथ है और इस तरह के जो ड्रग्स है जो इलीगली इन लोगों को अवेलेबल होती हैं. वो कहते हैं जी कि 1 in 7 डेथ्स इन शेल्टर जो थी सिर्फ उसको बचाया जा सका था क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई वहां पे मौजूद था. अलबत्ता जो बाकी के 6 लोगों की डेथ हुई थी ये इस वक्त उन लोगों ने अपना ओवरडोज किया था जब उनके आसपास शेल्टर में कोई भी मौजूद नहीं था. तो अब ये तो क्वेश्चन उठेंगे कि शेल्टर्स में भी अगर लोग जो हैं वो उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा तो फिर पायान फिर किथे इनको मॉनिटर किया जा रहा है. अच्छा जनाब, वो फैमिलीज जो कि एडवांटेज लेना चाहती हैं इंटरिम कैनेडियन डेंटल बेनिफिट का तो उनका सेकंड और फाइनल एप्लीकेशन पीरियड जो है वो क्लोज हो रहा है जून 20th को. आपको पता ही है कि अंडर दिस सिस्टम जो है कैनेडियन फैमिलीज जो कि लो इनकम के अंदर आती हैं दे गेट $650 पर चाइल्ड फॉर देयर एसेंशियल डेंटल केयर एक्सपेंसेस फॉर 2 ईयर्स. फाइनल राउंड जो है वो जो फैमिलीज को पैसे देगा फॉर किड्स अंडर 12 और ये जो है ये दिया जा रहा है बिटवीन July 1st, 2023 टू June 30th, 2024। तो ये डेट अब आ रही है, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाली है तो आप डाल लें। आप अप्लाई या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या आप इनको फोन कर लें एट 1-800-715-8836 पे बाय June 29th, क्योंकि June 30th को ये बंद हो रहा है सारा कुछ, या कि आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करें। और ये जरूर याद रखें कि संडे के दिन इनकी लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड होती हैं। वो शायद काम तो बैक ऑफिस में कर रहे होते हैं लेकिन टेलीफोन लाइंस बंद होती हैं, नहीं कर रहे होते। और ज्यादा अगर आपको एलिजिबिलिटी के सारे चाहिए कि हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स, तो CRA की वेबसाइट जो है उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं, आप जाके वहां पे करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर किड्स अंडर 18 जो है अब उसके लिए ओपन किया गया है, तो वो जून से ऑनवर्ड उसकी आप एप्लीकेशन जो है वो भर सकेंगे। ये फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो June 30th को क्लोज हो रहा है ये किड्स अंडर 12 जो है उनके लिए, और अगर किड्स अंडर 18 के लिए आप कर रहे हैं तो वो जून के बाद से आप अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर 5 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने बड़े ही रिजर्वेशन शो किए हैं कि ये जो इंडिया अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और जो FBI ने इंडिया का इन्वॉल्वमेंट खत्म किया था, ये जो थे गुरपतवंत सिंह पन्नू की डेथ के अंदर, तो उसके लिए अ यूएस सिटीजन ऑन अमेरिकन सॉयल, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि ये जो क्रेडिबल एलिगेशन इस पे लगाए गए हैं उसका आपको नोटिस लेने की जरूरत है। उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो सारी कुछ हरेसिंग और थ्रेटनिंग ऑफ सिख अमेरिकन है ये जस्टिस के अगेंस्ट है। ये लेटर इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब को लिखा है और उन्होंने पूछा इनसे कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है आपका वो क्या इंडियन गवर्नमेंट को प्रेस करेगा और उनसे पूछेगा कि आइंदा वो इस तरह के ट्रांसनेशनल जो है वो रिप्रेशंस ना करें, क्योंकि जो इंडिया है उसके कुछ कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जिसमें रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एट होम एंड एट द ग्लोबल लेवल है, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये लेटर जो 5 सेनेटर्स ने लिखा है उसमें है सेनेटर जेफरे मर्कली, बर्नार्ड सैंडर्स, रॉन वेडन, क्रिस वैन हॉलन, टिम केन, ये हैं इन्होंने ये लेटर लिखी है। और इन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान के साथ हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को गार्ड करने ही हैं, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर सेवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स जो हैं उनके सेफ गार्ड के लिए भी इंडिया से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस जो है जी वो अब पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो लड़ाई है वो ज्यादा जोर ना पकड़ ले। इसका जिक्र व्हाइट हाउस के जो एनवॉय हैं एमोस हॉस्टिन उन्होंने किया है, क्योंकि वो जो हैं इस वक्त लेबनान गए हुए हैं और उधर उन्होंने इससे पहले जो थी जो बेंजामिन नतन्याहू साहब की जो गवर्नमेंट थी और उनसे जो है मुलाकातें की थी इसराइल के अंदर, और उन्होंने कहा था जी कि बिल्कुल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे खुश नहीं है कि आप इस झगड़े को और आगे लेकर जाएं। 2 दिन के लिए हिजबुल्ला ने जो ईद के 2 दिन थे उसके लिए ये अपने अटैक्स जो थे वो रोके थे, इसके अलावा वो रेगुलरली थोड़े थोड़े वक्फे से इसराइल के ऊपर अटैक करता है। और अभी जब 2 दिन ईद के गुजर गए तो हिजबुल्ला ने इसराइली एक टैंक के ऊपर जो है सुइसाइड ड्रोन मारा है, तो चीजें जो हैं वो गाजा से अब आगे जा रही हैं। कॉन्स्टेंटली इनके बीच में लड़ाई है। लास्ट वीक हिजबुल्ला ने हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स और ड्रोन्स जो थे इसराइली मिलिट्री साइट के ऊपर फायर किए थे, जब इसराइल ने उनका एक कमांडर जो था वो मार दिया था। अक्टूबर से जिस वक्त से गाजा की वॉर शुरू हुई है उस वक्त से हिजबुल्ला जो है वो भी इसराइल के ऊपर अटैक्स कर रहा है। अलबत्त जो इनका वो है डोम जो ये के खोल लेते हैं इसराइल वाले, उससे नुकसान ज्यादा नहीं होता है, मिसाइल्स इनको हिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हियर एंड देयर जो है वो थोड़ा बहुत जो नुकसान है कोलैटरल डैमेज होता ही है इनकी वजह से। तो अब ये चीज अगर और ज्यादा बढ़ गई तो फिर ये खतरे का बायस हुई थी, इसीलिए ये एमोस हॉटस्टीन जो है ये यहां पे आए हैं। इन्होंने आज जो लेबनीज पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं नबी बैरी उनके साथ ये दौर की और उन्होंने कहा जी कि लेबनान को भी जरा इनको बात करनी चाहिए हिजबुल्ला के साथ कि ये लड़ाई ना करें। बाइडन साहब जो है बिल्कुल नहीं ये एक्सकलेशन चाहते हैं और जो है ये हमने इसराइल को भी वार्न किया है कि वो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन जो है वो इसके साथ हिजबुल्ला के साथ ना करें, क्योंकि दिस इज नॉट इन एनीबडीज इंटरेस्ट उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको जल्दी से सुलझाओ की तरफ लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जनाब अगर चीजें भड़की तो फिर ये भड़क जाएंगी। द टेलीग्राफ की ये स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक चाइना ने जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अर्ज किया है कि ये जो इन्होंने टिबेट पॉलिसी बिल साइन किया है ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसा ना करें। ये उन्होंने बात उस वक्त की है जिस वक्त एक हाई लेवल यूएस कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, और ये डेलीगेशन जो है इसको लीड कर रहे हैं हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकलस, जो कि इस वक्त इंडिया को विजिट कर रहे हैं बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी मुलाकात जो है हुई है टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर के साथ जिनकी के एज इस वक्त जो है दलाई लामा की 88 इयर्स है। फॉर्मर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है वो भी इस डेलीगेशन के अंदर हैं। धर्मशाला बहुत अरसे से जो तिब्बतन गवर्नमेंट है जब से वो एग्जाइल में ये गए हैं तकरीबन 6 डेकेड से ये यहां पे उन्होंने अपना जो है इसको सीट बनाया हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वोट किया था 391 से 26 वोट से टू अप्रूव प्रोमोटिंग रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, जिसको के पास कर लिया गया है सेनेट के अंदर भी। अंडर दिस बिल अमेरिका जो है वो फंड करेगा इनको दलाई लामा को और तिब्बत को, ताकि ये वो कहते हैं जी चाइना का जो डिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट देयर हिस्ट्री अबाउट देयर पीपल उसको खत्म किया जा सके। इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है लिन जियांग, उन्होंने मीडिया को बताया कि ये ब्रीफिंग जो है 14 दलाई लामा के साथ जो है वो जो की जा रही है ये बिल्कुल प्योरली जो है वो पॉलिटिकल नेचर की है, इसमें रिलीजियस कोई चीज भी नहीं है, और ये एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं ये अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिसको कि हम बड़ी बुरी नजर से जाहिर करके देखते हैं। उन्होंने यूएस को कहा कि आप एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द लाए ग्रुप जो है उसको बिल्कुल आप रिकग्नाइज मत करें और ऑनर करें आपकी तमाम की तमाम कमिटमेंट्स जो आपने चाइना के साथ किए हैं, क्योंकि वो इसको तिब्बत ये लोग कहते हैं और चाइना इसको जी जैंग कहता है। जी वो कहता है ये हमारा एक सूबा है जी जैंग, तो वो कहते हैं कि ये जो जी जैंग का एरिया है या शी जैंग भी आप इसको बोल सकते हैं, शी जैंग का एरिया जो है ये हमारा है और इसके ऊपर आप सियासत ना करें। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, एक तरफ तो आप जाते हैं भाग भाग के चाइना के जी हमने तलुकात अच्छे करने हैं, और फिर आप उनके इंटरनल मसलों में भाजियां मारते हैं, तो फिर पाईजान ये तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा है। अच्छा जनाब, यूके के अंदर आज काफी जो है वो शोर वोर मचा रहा, क्योंकि यूके की नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट जो फैमिली है उसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केसेस हैं वो आ गए हैं, और ये जो ट्रायल है ये स्विट्जरलैंड के अंदर खुल गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि अपने कुत्तों के ऊपर ये ज्यादा स्पेंड करते हैं, अपने सर्वेंट्स के ऊपर कम इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूके की रिचेस्ट फैमिली है ये है हिंदुजा फैमिली, बेसिकली दे आर फ्रॉम इंडिया, और इनकी जो वर्थ है इस वक्त 47 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, और इनको एक्यूज किया गया है फॉर एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बैड बिहेवियर विद द सर्वेंट्स। वो कहते हैं जी कि इनका जो विला है वो जिनीवा के वेल्दियस्ट नेबरहुड के अंदर है कलोगने के अंदर, और ये जो हैं सर्वेंट्स को इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से टू लुक आफ्टर देयर किड्स एंड हाउसहोल्ड। प्रकाश एंड कमाल हिंदुजा और इनके जो बच्चे हैं अजय हिंदुजा और उसकी वाइफ नम्रता, वो जो हैं अपने स्टाफ के पासपोर्ट्स ले लेते हैं और इनको जो है $8 देते हैं फॉर 18 आवर वर्क, और वो कहते हैं जी कि इनको बिल्कुल ज्यादा फ्रीडम भी नहीं दी जाती है कि वो घर वर छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो इनको किया जा रहा है ट्रायल पे डाला है ट्रैफिकिंग के लिए, जो कि बड़ा ही एक सीरियस ऑफेंस है स्विट्जरलैंड के अंदर। इन्होंने जो है जाहिर है कि सारे ये चार्जेस जो है इनको डिनाई किया है। इस हफ्ते में जो जिनीवा की फेमस प्रोसिक्यूटर है ईव्स बर्टोसा, उन्होंने कंपेयर किया था कि ये फैमिली जो है $10,000 पर ईयर अपने कुत्ते के ऊपर तो स्पेंड करती है लेकिन अपने सर्वेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करती है। हिंदुजा फैमिली के जो लॉयर्स हैं उन्होंने स्पेसिफिकली तो इन डेलीगेशंस को डिनाई नहीं किया है, उन्होंने कहा जी कि हम इन सब चीजों को देखेंगे, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जी अगर सैलरी थोड़ी है तो जो स्टाफ है उसको अकोमोडेशन और फूड जो है वो भी दिया जाता है, और ये जो ट्रायल है उसकी वजह से अब जो इंग्लैंड के जो रिच हैं उनके ऊपर जो है अब क्या असर होने वाला है या उनके खिलाफ कोई लिए जा सकते हैं एक्शन। अलबत्ता एक रिपोर्ट जो आई है इंग्लैंड से इस बीच में कि इंग्लैंड से बहुत सारे मिलियनेयर्स जो हैं वो अब इंग्लैंड को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हैनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, वो कहते हैं जी कि यूके ने लूज किए हैं 9,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इन 2024, विच इज डबल द फिगर कंपेयर टू लास्ट ईयर विच वॉज 4,200. इसके साथ साथ चाइना से भी तकरीबन कोई 15,200 मिलियनेयर्स जो हैं इस साल में निकल चुके हैं. और ये सारी की सारी रिच फैमिलीज जो हैं ये रीलोकेट हो रही हैं टू मेन लैंड यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट, वहां ये लोग जा जाके बस रहे हैं. तो ये तो जनाब बड़ी खतरे में ना खबर है. ये अमीर बंदे अगर यूके से और चाइना से चले जाएंगे इन कंट्रीज में तो फिर क्या होगा. अच्छा जी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने जो अपनी वॉर कैबिनेट थी उसको डिसॉल्व किया है. और इनका काम जो था ये जो गाजा में वॉर चल रही थी उसको देखना था. और ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त बेनी गैंट्स जो हैं उन्होंने अर्लियर दिस मंथ जो है अपना रेजिग्नेशन किया था. और क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे नेतन्याहू साहब जिस तरह से वॉर को हैंडल कर रहे हैं. बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने मीडिया से बात की ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी और उन्होंने कहा जी कि नेतन्याहू जो है अब स्मॉलर फोरम्स जो है गवर्नमेंट मेंबर्स के साथ और ये जो बड़ा सेंसिटिव वॉर का इशू है इसके साथ होल्ड कर रहे हैं. इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट और फार राइट गवर्निंग पार्टनर्स जो हैं उनके साथ कर रहे हैं क्योंकि फार राइट गवर्निंग पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल जो हैं ये सीज फायर की डील के खिलाफ हैं. और वो कहते हैं कि जो गाजा है उसको रीऑक्यूपाई करना चाहिए. नेतन्याहू साहब जो है जाहिर है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है यूएस गवर्नमेंट का. और यूएस गवर्नमेंट ने ये भी आज कोई जो र्यूमर्स थे वो आए थे कि शायद वो अब आर्म्स की सप्लाई इसराइल को बंद करेंगे. नेतन्याहू साहब ने जब ये र्यूमर सामने आया तो उसने कहा जी कि यूएस जो है वो विदहोल्ड कर रहा है आर्म्स शिपमेंट्स टू इसराइल जो कि बिल्कुल गलत है. इसके ऊपर जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर जो हैं उन्होंने कहा है कि हमको जेन्युइनली नहीं पता है कि ये बातें कहां से नेतन्याहू साहब के पास पहुंच रही हैं और वो सुन रहे हैं. इसके बीच में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हम दुनिया को बड़े कंसर्न से देख रहे हैं, बड़ी जो है मुश्किलात दुनिया के अंदर बढ़ गई हैं. खासतौर पर उन्होंने कहा जी कि चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो हैं दे आर कंट्रीज ऑफ कंसर्न क्योंकि ये रशिया की इकोनॉमी को किसी तरह नीचे नहीं आने दे रहे हैं. एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग से और इन्होंने कहा जी कि ये नॉर्थ कोरिया और ईरान जो हैं ये कॉन्स्टेंटली रशिया को सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स जिसकी वजह से ये जो लड़ाई है यूक्रेन की ये नहीं लड़ रही है और दूसरी जो लड़ाई है अब ये जो इधर रेज कर रही है गाजा में. तो जाहिर है कि अमरीका के लिए दोनों ही वॉर जो है सरदर्द बनी है. तो भाईजान फिर आपका ही लेना देना है ना, आप ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो वो जाहिर है कि वो अब जो है फिर बढ़ती चली जा रही है. तो आप ना बढ़ावा देते तो वो ना बढ़ती है ना ऐसे. अच्छा जनाब, आज जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको सिप्री भी कहते हैं उसकी रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक उसका जो एनुअल असेसमेंट है उसके मुताबिक इंडिया जो है उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा जी कि यूएस जो है सबसे ज्यादा वॉर हेड्स जो है वो रखता है, इसके बाद जो है रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल जो हैं इस लाइन में आते हैं. एक्सक्यूज मी. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को जो कि न्यूक्लियर केपेबल हैं. तकरीबन 9,585 जो वॉर हेड्स हैं ऑफ 12,121 जनवरी 2024 ये मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं जिनको के पोटेंशियली यूज किया जा सकता है. 3,904 जो हैं इसमें से जो हैं वो मिसल्स हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं वो 60 हैं मोर देन जनवरी 2023. 2,100 जो हैं उनको स्टेट ऑफ हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे रखा गया है और ये बैलिस्टिक मिसल्स हैं. इन्होंने कहा जी कि रशिया जो है वो और यूएस जो हैं उनके पास 90% ऑफ दीज न्यूक्लियर वेपन्स हैं. 1200 रिटायर्ड वॉर हेड्स फ्रॉम मिलिट्री सर्विस जो है उनको डिसमेंटल किया जा रहा है. चाइना जो है वो भी अपने इंक्रीज कर रहा है ये जो है वॉर हेड्स फ्रॉम 410 इन जनवरी 2023 टू 500 इन जनवरी 2024. यूके जो है वो भी ये कर रहा है, ग्रो कर रहा है अपना स्टॉक पाइल. फ्रांस जो है वो तो अब डेवलप कर रहा है थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और न्यू एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स. इंडिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी यही कर रहे हैं। इंडिया ने भी अपना बहुत सारा स्टॉक पायल 2023 में एक्सपेंड किया था। नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त 50 वॉर हेड्स हैं और ये 90 वॉर हेड्स तक रीच करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके साथ साथ इसराइल भी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ कर रहा है और ये जो इनका डिमोना प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा है। तो ये जनाब खैतरे की कैंटी है जो कि बेचती जा रही है पर कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा जाहिर। ओके जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ये है। 32 इसके अंदर लग्जरी रूम्स हैं और आप 1400 लोगों को बुला सकते हैं और ये जो 1400 लोग हैं उसके अंदर ढाई बंदा और भी आप शामिल कर सकते हैं जी, जो ऑब्वियस ही आपको पता ही है। अब क्या आपको रोज रोज बताना है। दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्यू रोड मिसिसागा। इनका नंबर है 6479653823 अगर आप इनको कॉल करना चाहें। एंड जनाब राजा बादशाह ऑल स्टेट के साथ होते हैं, कहते हैं मैं आपको बिल्कुल राइट कवरेज देता हूं, इंश्योरेंस यानी कि आपको घर और ऑटो की देते हैं। आप इनके पास जाएंगे तो आपको ये सारी अपनी सुविधाएं बताएंगे। तो अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आप राजा ते बादशाह जी को फोन करें। इनका नंबर है 6472903773, दैट इज 6472903773। और जनाब जो हमारी एक पाकिस्तानी फिल्म उमरो अय्यार वो जो है ईद के मौके पे पाकिस्तान पे रिलीज की गई थी और अब वो नॉर्थ अमेरिका में भी आ रही है 21st को, तो इसके जो कुछ सितारे हैं वो शायद हमारे साथ कुछ दिनों में जुड़ सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भई आपने हमारा प्रोग्राम रोज देखना है ताकि आपको पता चले कि ये कब आ रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो केपी के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ये जो बजट है इस साल का उसको ये करेंगे 2024-25 का उसको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बातचीत जो है वो जारी है। इन्होंने कहा जी कि पहले जो खबरें आ रही थी जो हम आपको बता रहे थे कि शायद पीपीपी वाले जो हैं बॉयकॉट करेंगे ये बजट को और शायद जो इनकी गवर्नमेंट जो है उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि बिलावल और जो जरदारी साहब हैं वो दोनों ही जरा कुछ नाराज नजर आते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इसहाक डार साहब उनको कहा था कि भई आप जाके इनके साथ बातचीत करो और इनको लाओ, तो फिर एक बहुत ही कम से जो लॉ मेकर्स थे वो आए थे। नेशनल असेंबली के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब जो थे उन्होंने जून 12 को बजट पेश किया था जिसपे कि पीपीपी ने कहा था हम बायकॉट करेंगे अगर ये सामने आएगा बजट, और फिर उसके बाद सारी ये जो डेवलपमेंट हुई थी। कुंडी साहब ने आज बात करते हुए कहा, जो कि पीपीपी के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो हमारी तय हो गई है और बिल्कुल आईएमएफ की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक उसकी कंसल्टेशन से ये बिल लाया गया है यानी कि बजट लाया गया है और बड़ा अच्छा बजट है। और उन्होंने बड़ी तारीफ की प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने कहा कि आईएमएफ का हम ये हेल्प जो है लास्ट टाइम ले रहे हैं और उसके बाद या पाकिस्तान को जो है इससे छुटकारा दिलाएंगे। केपी के चीफ मिनिस्टर जो है अली अमीन गंडापुर, उसके बारे में जो कुंडी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि मेरी अभी तक उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, ईद पे भी नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ मुलाकात कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है कि दोनों जो हैं वो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं बिकॉज एक पीपीपी से है और दूसरा पीटीआई से है। फिच रेटिंग्स जो हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ सकता है और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है पाकिस्तान की वो भी इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन्फ्लेशन जो है उन्होंने कहा कि 12% पे रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने लास्ट वीक अपना जो की जो इंटरेस्ट रेट था या ओवरनाइट लैंडिंग रेट जिसको कहते हैं उसको काटा था बाय 150 बेसिस पॉइंट्स और ये फर्स्ट रिडक्शन थी इन 4 ईयर्स टू बूस्ट ग्रोथ अमिड शार्प डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन। की रेट जो है उसको कट किया गया है 20.5% पे, जबकि डेटा ने यह शो किया था कि इन्फ्लेशन हौले हौले जो है वो नीचे आ रही है। इट वॉज 30-month low ऑफ 11.8% इन मे। तो ये फिर फोरकास्ट किया गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें पॉलिसी रेट रहेगा 16% पे। तो फिच ने कहा कि ये बहुत ही एम्बिशियस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट है और ये स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स टू स्ट्राइक अ बेल आउट डील विद आईएमएफ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये भी नीचे आएगा, इवन दो अभी बजट जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंट किया गया पूरी तरह नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी टिप्पणियां जो हैं वो इस पे दी हैं। پاکستانی برٹش بزنس مین جو ہیں لیاقت ملک, انہوں نے آج کہا ہے جی کہ ہی لاسٹ 200,000 pounds کیونکہ وہ جو فیمس پنجابی سنگر ملکو تھا اس کو جو یہاں پہ بلا رہے تھے وہ تو وہ نہیں آ سکا, اور ان کے جو کانسرٹ انہوں نے آرگنائز کرائے تھے لندن میں اور اس کے بعد June 19 میں, لیکن ملکو جو ہے اس کو پہلے لاہور ایئرپورٹ پہ روکا گیا June 16 کو, اور پھر June 17 کو دوسری دفعہ ان کے ساتھ سنگر سارا الطاف نے بھی آنا تھا لیکن وہ بھی نہ آ سکیں کیونکہ ٹور جو تھا وہ کینسل کر دیا گیا تھا. ملکو جس کا اصل نام محمد اشرف ملک ہے, اس نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نو اسٹاپ لسٹ پہ میرا نام کیوں ہے, اور اس نے اتھارٹیز کو کہا کہ میرا نام جو ہے یہ کریں. یہ جو لیاقت ملک صاحب ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے جو لا میکرز ہیں شیر افضل مروت اور دوسرے لوگوں کو بھی لندن میں, تو وہ لوگ تو لندن پہنچ گئے تھے. ایک پریس کانفرنس بھی وہاں پہ ہیترو ایئرپورٹ پہ جو ہو رہی تھی اس پہ جو ہے ملک سوری یہ جو ہیں مروت صاحب انہوں نے بہت زیادہ گورنمنٹ کو کریٹیسائز کیا. انہوں نے کہا جی کہ سنگرز تو بہت سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ڈفرنٹ ان کے لیے گانے گاتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ روک دیتے ہیں کہیں پہ بھی ٹور کرنے سے. اور آپ نے انگلینڈ کے اندر بہت سارے لوگوں کی عید جو ہے وہ سپوائل کر دی ہے کیونکہ لوگ جو انتظار ملکو کا کر رہے تھے. اٹس ویری ویری شیم فل, مروت صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا جی اتھارٹیز کو کہ اس کو آنے دیں, اس کو آپ کیوں روک رہے ہیں, آپ کو کیا ڈر ہے اس کا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملکو کو فیم ملا تھا قیدی نمبر 804 اور نک دا کوکا اس نے گایا تھا عمران خان کے حق میں, اور اس کے بعد سے جو ہے پھر یہ لوگوں کو پسند جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایٹ ہیلم ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, ہے نا. تو اس کے اوپر آج شیر افضل مروت نے بہت زیادہ کیری سائز کیا گورنمنٹ کو. ہندوستان کے اندر تو جناب آج پھر سے بہت ہی افسوسناک واقعے دیکھے گئے کیونکہ جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے اپنی ویان کی جو سیٹ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں جو اپنی دوسری سیٹ ہے جو کہ وہ رائے بریلی سے یو پی کے سے لڑے تھے ادھر والی وہ سیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر جو ہے وہ بی جے پی بھڑک گئی. بی جے پی کے لیڈر اجے الوک جو ہیں وہ کہتے ہیں بہت اچھا بہت مزہ آئے گا اگر یہ ان کی بہن پریانکا بھی جیت جائیں گی تو ان دونوں کو پارلیمنٹ میں دیکھ کے, کیونکہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ زیادہ یوز لیس راہل گاندھی ہے کہ زیادہ یوز لیس پریانکا گاندھی ہے. ویری سیڈ بھائی جان, واٹ از دس اجے الوک صاحب, واٹ از دس, ایسے کہتے ہیں گندے بچے نہ بنے. تو بہرحال جی انہوں نے کہا کہ کون زیادہ یوز لیس نظر آئے گا پارلیمنٹ کے اندر تو دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. کانگریس کے جو پریزیڈنٹ تھے ملک ارجن کھرجے, انہوں نے ارلیئر اناؤنس کیا تھا پریانکا کی کینڈیڈیچر فرام ویان کی جو سیٹ تھی, کیونکہ راہل نے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا اس نے کہا کہ میں رائے بریلی کی سیٹ رکھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں سیٹوں سے ہی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا لوک سبھا میں کے الیکشنز میں, اور وہ دونوں سے جیتے تھے. اس سیٹ کے اوپر کرنٹلی جو ہے ملک ارجن کھرجے ہیں. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو لیڈر ہیں اینی راجا, انہوں نے بھی آج بہت اعتراض کیا راہل گاندھی پہ. انہوں نے کہا جی ویسے تو یہ آپ کی پارٹی ہے اور آپ کا پروگریٹو ہے, آپ کیسے اس کو رن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل موریلٹی بھی ہوتی ہے. آپ کے ووٹرز نے آپ کو اتنی بڑی میجورٹی دے کے آپ کو جتایا تھا, تو آپ کا کام تھا کہ آپ ویان کے ووٹرز جو ہیں ان کو آپ بتاتے, آپ ان کے ساتھ یہ انجسٹس نہیں کر سکتے کہ آپ اچانک سے چھوڑ دیں سیٹ اور بتائیں کہ میری بہن اس میں سے لڑ رہی ہے. اور اگر پریانکا جو ہے وہ جیت جائیں گی تو پھر جو گاندھی پریوار جو ہے اس کے تین لوگ اب آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے. ان کی والدہ سونیا گاندھی جو ہیں آلریڈی راجیہ سبھا میں ہیں, اور پھر اب راہل تو آلریڈی لوک سبھا میں ہیں, اور اب ان کی بہن جو ہیں وہ بھی آ جائیں گی. تو جناب یہ چکر ہے. انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوال صاحب, انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ یہ جو ٹیررزم ہے کراس بارڈر ٹیررزم یہ بہت زیادہ مسئلے ہمیں پیدا کر رہی ہے, اور اس کا کوئی بھی موٹیو ہو یہ جسٹیفائیڈ بالکل نہیں ہے. یہ پرپیٹریٹرز آف ٹیررزم جو ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ بہت افیکٹولی ڈیل کیا جائے گا اور اس کو روکا جائے گا. اس سلسلے میں ایک انٹرویو کیا ہے 25 منٹس کا دا وائر کے سینئر ایڈیٹر کرن تھاپر صاحب نے. ایک دفعہ سے پھر فارمر را کے جو ہیڈ تھے امرجیت سنگھ دولت ان کے ساتھ, کیونکہ جو انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ اب بہت سارے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں پھر سے ہونے شروع ہو گئے ہیں. امرجیت دولت صاحب نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم کا جو نیسٹی بزنس ہے وہ واپس آ گیا ہے, اور یہ بڑی ہی ہارش ریالٹی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ 70-80 ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان سے ہندوستان کے اندر آئے ہیں, اور یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر ہے, اور یہ بڑا ہی سیریس اور وری سم میٹر ہے. और मगर मुझे जो है उन्होंने गवर्नमेंट को भी बेइंतहा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट बैठी हुई क्या कर रही है, ये जो है क्यों नहीं इन्होंने अभी तक इनको पकड़ा है, क्यों नहीं इनको फाइंड आउट किया है और क्यों नहीं इनको जो है उनके खिलाफ ये कुछ कार्रवाई कर सके हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे तो इसमें पॉसिबल इंटेंशन ISI की लग रही है कि वो इन अटैक्स के पीछे हो सकते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप हमें भूल ना जाओ कहीं। तो लेकिन उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब की तारीफ की, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI जो पॉसिबली कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब का जो अभी बड़ा वार्म मैसेज या जो उनकी बेटी मरियम की जो स्पीच थी सिख पिलग्रिम्स के साथ, उसके बिल्कुल खिलाफ मुझे नजर आ रहा है। यानी कि इन दोनों के सेंटीमेंट और हैं और ISI और पाकिस्तान मिलिट्री के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और हैं। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म जो अब ये फिर से भड़क गई है, इसका मतलब है कि इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और वैसे तो मैं ये नहीं बता सकता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन तीन चीजें मैं इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकता हूं कि एक तो अगर आप जम्मू और कश्मीर में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं तो और कश्मीरियों में, तो आप स्टेटहुड उनका फिर से रिवाइव करें। यानी कि वो जो आर्टिकल 370 आपने खत्म किया था उसको आप करें, स्टेट के अंदर इलेक्शंस करवाएं सितंबर या अक्टूबर में, कश्मीर को आप भूलें मत। और तीसरा पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, पाकिस्तान के साथ ये जो आपने बातचीत बंद कर दी है पिछले 10 साल से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू पाकिस्तान बिकॉज बोथ द भुट्टोज एंड द शरीफ्स दे आर ऑन वन साइड, और उनके साथ बातचीत करना और उनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा जो है वो आसान होएगा। और भी बहुत सारी बातें जो है दौलत साहब ने की हैं, दौलत साहब क्योंकि दौलत साहब से ज्यादा कश्मीर को कोई भी अच्छा नहीं समझता, ही इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर। तो इसलिए बहुत जबरदस्त ये इंटरव्यू है करण थापर साहब का, ये आप देख सकते हैं द वायर के ऊपर। और जनाब सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक जो हैं, उनको पहले तो अरेस्ट किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया, इनको अरेस्ट किया गया था, इनको एक्यूज किया था फॉर ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड ऑन न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड, और फिर इनको जो है छोड़ा गया। ये इनके जो हैं, अच्छा ही हुआ इनको छोड़ दिया क्योंकि इनके दो शोज आने वाले हैं, शिकागो में एक इनका शो है फ्राइडे को और सैटरडे को, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन के अंदर नेक्स्ट ट्यूजडे और वेंसडे को इनके कॉन्सर्ट्स हैं। तो भाई जान आप सेलिब्रिटी हो, आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपसे
गेट समबडी एल्स टू ड्राइव द कार,
द कार, या यू आर सच अ रिच मैन, तुम या फिर तुम तो टैक्सी पे भी जा सकते हो यार, टैक्सी का किराया देना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग्स। लोग जो है तुमको अपना रोल मॉडल बच्चे मानते हैं, यार यू विल डू दिस, व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। जो रोल मॉडल्स होते हैं ना बच्चों के, उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जनाब अलका याग्निक 58 ईयर्स ओल्ड हैं और बड़ी आपको पता है क्वीन है सिंगिंग की, बड़े मशहूर गाने इन्होंने गाए हैं, टिप टिप बरसा पानी है, मेरे हम सफर, चांद चुप छुपा बादल में, अगर तुम साथ हो, बड़े जबरदस्त सेंसेशनल गाने इनके होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अचानक से रियलाइज किया है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया जा रहा है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने अपने फैंस को कहा कि प्लीज आप मेरे लिए दुआ करो। इन्होंने कहा जी कि मुझे सेंसो रिन्यूरल डेफनेस जो है वो डायग्नोज की गई है, तो बड़ा ही अफसोस है मुझे भी ये खबर सुन के, क्योंकि बड़ी ही सिंगिंग, ये सही मेलोडी क्वीन है, ये बहुत जबरदस्त गाती है। और जनाब अली अनिल कपूर साहब, जिनका हमने आपको पहले भी बताया था कि सलमान खान की एब्सेंस में बिग बॉस को अब OTT के ऊपर ये उसका थर्ड सीजन होस्ट करेंगे, और इनको आज जो है ऑफिशियली जो है एज शो होस्ट अनाउंस किया गया है मीडिया के सामने। बिग बॉस 17th विनर के जो मुनव्वर फारूकी हैं उनके साथ ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि जी आप दोनों में से बड़ा स्टार कौन है, तो अनिल कपूर ने कहा कि सलमान खान जो है उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ लेकिन अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, अलबत्ता सलमान खान का दिल बहुत बड़ा है, वो बड़ा एक्साइटेड है मुझे एज अ न्यू होस्ट देख के, और वो बहुत खुश है, मैंने उससे बात की थी और उसको अच्छा लगा कि मैं ये शो कर रहा हूं, ये नॉन फिक्शनल शो जो है वो मैं कर रहा हूं। तो भरल जी वो कहते हैं सल्लू भाई जैसा तो कोई नहीं है, वाकई भाई जान सल्लू भाई जैसा कोई भी नहीं है। और जी कल जैसे हमने पीरियडी छीन की थी जो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, वेस्ट इंडीज ना सिर्फ जीता बहुत धड़ाके से जीता, 104 रन से उन्होंने जो अपना ये 40th मैच चल रहा था ऑफ T20 वर्ल्ड कप एट डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड इन ग्रॉस आइलेट सेंट लूसिया के अंदर वहां पे उन्होंने हराया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान चेस कर रहा था 219 रन्स का टारगेट, लेकिन उसको वेस्टइंडीज ने बोल आउट किया फॉर 114 इन 16.2 ओवर्स। उबेद मैकॉय जो है उसने 3 विकेट ली फॉर 14 रन्स। गुदाकेश मोती और अकील हुसैन ने 2-2 विकेट ली। इससे पहले अफगानिस्तान जो है उसका जो था नहीं उससे पहले नहीं बाद में बैटिंग की ना इन्होंने, तो बैटिंग बाद में करते हुए अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान जो है उन्होंने 38 रन बनाए ऑफ 28 बॉल्स। अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था। निकोलस पूरन जो थे उन्होंने 98 रन बनाए ऑफ 53 बॉल्स और 2 बॉलों से रह गए बेचारे रन आउट हो गए, वरना 100 इनकी ये बना सकते थे। और जॉनसन चार्ल्स जो है उन्होंने 43 बनाए फॉर 27 बॉल्स। गुलबदीन नायब जो है उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से 2 विकेट्स ली थी फॉर 14। अजमतुल्लाह और नवीदुल हक ने 1-1 विकेट ली थी, लेकिन इस मैच का कुछ इतना फायदा नहीं है, शायद पॉइंट्स में कुछ फर्क पड़े क्योंकि वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान दोनों ही सुपर 8 में ये पहुंच चुके हैं क्योंकि अपने पहले 3 मैचेस वो ग्रुप सी में जीते थे। और रोमेरियो शेपर्ड जो हैं वो चले गए थे, उनके दूसरे बच्चे की पैदाइश थी तो उनको रिप्लेस किया गया था उबेद मैकॉय से, जिसने फिर 3 विकेटें ली और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की और अफगानिस्तान की टीम में कोई भी चेंज नहीं था। और जनाब यूरो कप 2024 शुरू हो गया है। फ्रांस ने 1-0 से ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट अपना पहला ग्रुप टी का जो ओपनर था वो जीता यूरो 2024 में, लेकिन ये गोल कैसे हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये गोल ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रिया के जो मैक्स वॉबर हैं उन्होंने मार दिया बॉल और उसकी वजह से जी इनका फ्रांस का हुआ, बरल बच गया फ्रांस बड़ा वो। लेकिन इसके अंदर ये हुआ है कि जो एम्बैपे हैं उनका नाक जो है वो टूट गया है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि इनकी टक्कर हुई थी एक जो ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं उनके साथ और काफी इनके नाक वक से खून निकल रहा था, मिड एयर कोलिजन इनकी
हुई थी। अगर आप देखें ना तो कोई बाजफा अगर आप की नाक किसी के सर पे लगे ना तो ब्लीडिंग एंड ब्रेक होती है।
हाँ,
मगर ये उनके पीछे जिसको पठा कहते हैं ना,
हाँ, हाँ,
शोल्डर पैड जो होता है तो शोल्डर पैड से वो टकराए हैं और आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई सॉ दैट,
लेकिन बहुत खून निकल रहा था,
बहुत खून।
लेकिन अब ये जो है ये नोज मास्क पहनेंगे अगर इनको बाकी के मैचेस खेलने हैं तो ये है। और इसके साथ ही जो फ्रांस
जो मैपे ने क्या किया है कि उसके गेम के फौरन बाद अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर उन्होंने कहा है कि एनीबडी नोज गुड मैच,
यस एग्जैक्टली। अच्छा इसके साथ ही फ्रांस और नेदरलैंड्स जो हैं उनके निम्बिर बराबर हो गए हैं। स्लोवेकिया जो है उसने तो जनाब मेजर अपसेट किया है यूरो 2024 में, क्योंकि जो ये हैं अंडरडॉग्स इन्होंने 1-0 विन ली है बेल्जियम के अगेंस्ट। बेल्जियम वॉज एन अमेजिंग टीम और फ्रांचेस्को कैल्जोना जो है उनकी साइड ने 45 स्पॉट्स ये जो है ये बिलो हैं थर्ड प्लेस्ड बेल्जियम से इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो आप सोचे जरा, बेल्जियम थर्ड नंबर की टीम है और उसको इन्होंने जो है 1-0 से हराया है, तो बहुत बड़ा ये अपसेट था, वेरी बिग अपसेट। और जनाब आज शाम को पोर्चुगल वर्सेज चीजिया का मैच होएगा यूरो 2024 के अंदर और देखेंगे कि ये कैसे है। और जनाब रोनाल्डो साहब जो हैं वो अपना 6th या पता नहीं कौन सा 7th या 8th, हाँ भूल जाओ नंबर भूल जाओ तो
भूल जाओ
हैं वो वाला, अब ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं पायन,
भूल जाओ इतने
ये कितने खेल लिए पायन और अपने कितने खेलने हैं भाई जी,
अभी भी रिटायर हो रहे
हैं, अभी भी रिटायर हो रहे हैं। और देखो तो अल नसर के लिए भी खेल रहा है और वो लंबे पैसे आ रहे हैं माजिद भाई, और देखो कितने कंजूस लोग हैं, हमको सिर्फ जो है मिलियन कैनेडियन डॉलर चाहिए वो नहीं हमको दे रहे, ये अरे भूखे नंगे लोग हैं, व्हाट इज दिस माजिद भाई गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, है कोई गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है इनको,
और आप उनको दिखाने के लिए अपनी गुर्बत दिखाने के लिए आप कभी किसी जानवर का पहने,
हाँ कभी चीते के कपड़े पहने हुए हैं, कभी मुर्गी के खाल पहनी हुई है, कभी कल मैं मुर्गी वाले कपड़े पहन के आऊंगी है उसकी खाल मैंने उतारी है, और कभी जो है वो बिल्ली की पहनी हुई है, कभी चूजे की पहनी हुई है,
किसी को तरस नहीं आ,
किसी को तरस नहीं, कभी फटे होते हैं कपड़े मेरे, कल मैंने नहीं छोड़ो मैं कल फटे हुए कपड़े पहन के,
कल फटे हुए,
हाँ कल मैंने फटे हुए कपड़े पहने,
शायद उस पर तरस आए,
शायद उस पर तरस आए कोई इनका।
ये भी हमारी आज की न्यूज, एंड अभी ज्यादा नहीं हो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, अभी ज्यादा नहीं है आपने, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
हाँ लीजिए बाकी की चीज भी खा लीजिए आप और अब वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्पेशल बुलेटिन जो है ये पेश करते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम शाहजे जी, जीशान एंड आमिर। अब आपसे कुछ ही देर बाद स्पॉन्सर्स के पैगाम होंगे, उसके फौरी बाद ये लोग प्रोग्राम को टेक ओवर करेंगे और टेक ओवर करने के बाद आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आप भी बीच में शामिल हो जाना है भाई, 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है स्टूडियो का। और आज मेहमान अमिताभ है आज?
नहीं, अमिताभ फ्राइडे के फ्राइडे होते हैं हमारे साथ, आज हैं रजीव चौधरी। जुमे के दिन था वादा ना, जुमे का वादा,
तो जुमे का वादा हो गया,
जुमे का वादा है। हाँ जी, उनके साथ
जुमे का वादा है। जुमे को जनाब अमिताभ साहब को देखना ना भूलिएगा आप। हाँ। अमिताभ साहब इधर होंगे हमारे साथ।
आज रंजीत चौधरी साहब है हमारे,
रंजीत चौधरी साहब। हाँ। ही स्पीक्स वेरी वेल,
बड़े स्वीट है वो,
वेरी स्वीट, ही स्पीक्स वेरी वेल। दीज आर ऑल एक्सपर्ट इन क्रिकेट।
30 ईयर्स हो गए हैं माजिद भाई इनको जो है, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिकेट की उसके अंदर।
तो वो हमारे साथ होंगे चौधरी साहब, चौधरी साहब,
हाँ चौधरी साहब, एक बाजवा साहब थे एक चौधरी साहब,
हाँ
साहब, ज्यादा लंबे नाम नहीं।
अमिताभ साहब, अमिताभ साहब का मैं अमिताभ साहब
बड़े ही आप नाटी हो गए हैं मजे भाई।
दे आर ऑल ग्रेट पीपल, ऑल ग्रेट पीपल, एंड द बेस्ट पार्ट इज दे ऑल हैव सेंस ऑफ ह्यूमर।
यस, कैसर सगीर भी होते हैं हमारे साथ, कैसर जो है, हाँ कैसर भी होते हैं, कैसर जो है वेंसडे को हमारे साथ बात करते हैं।
क्या बात है कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
और जो थर्सडे को होता है हमारा इन हाउस एक्सपर्ट जो है जीशान अहमद, वो जीशान होता है, क्या फैक्ट्स लेकर आता है माजिद भाई, वो अंदर से बिल्कुल इनसाइड, डीप इनसाइड।
वाओ,
हाँ
ओके। तो स्पॉन्सर्स के पैगाम, डोंट यू गो अवे, विल बी राइट बैक।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM ਦੀ ਨਸ਼ਕੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ
6478724900। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਬਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ओए, एक ब्लॉकबस्टर प्लान बनाइए, पूरी मस्ती, मजे, नचना गाना हो जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਪਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਦੇਣਗੇ $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਰੀਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਾਰਬੇਕਿਊ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਔਨ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਪਾਓ $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। 519-622-0660, ਮਾਨਸੂਨ 19-622-0660। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ, ਨੈਪਨੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। paradontics, orthodontics, dental implant, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं. आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं. स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं. अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसेस सागा 4167579999 स्कारब्रो.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका. 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3. ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800.
स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है. बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स. लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416